Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jisme भगवती शक्ति का ही सारा सौंदर्यता, सारा भाव भरा हुआ है और शक्ति को इस तरह प्रतिष्ठित किया है शंकराचार्य जी ने। मान लो कि शक्ति की उपासना के बिना किसी की अध्यात्म में गति हो ही नहीं सकती है, यहां तक कि किसी भी क्षेत्र में गति नहीं हो सकती है। जब सौंदर्य लहरी पढ़ते हैं, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा के प्रति इतना भाव बढ़ जाता है, इतनी श्रद्धा, इतनी विश्वास बढ़ जाता है। पहले मंगलाचरण श्लोक में ही उनकी प्रतिज्ञा है, सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक। शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम नचे देवो देवम नखलु कुशल स्पंदितुम अपि अतस्त्वाम आराध्यम हरिहर बिरंच्यादिभिरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कतमकृत पुण्य प्रभवति। यहां तक कहा है कि हे भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा पराम्बा, शिव जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं वह चैतन्य स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञान स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। आनंद स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। अद्वैत स्वरूप है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। शिव का मूल स्वरूप क्या है? सत चित आनंद अद्वैत। इसलिए उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहतम गुहायाम परमेव्योमन। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, मुंडक उपनिषद में परमात्मा के लिए कहा शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंचो उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। देख लो, सारे प्रपंचों का जहां जाकर उपशम हो जाता है, बाद हो जाता है। जितने भी प्रपंच हैं, सारे नाम रूपात्मक प्रपंच जहां जाकर उपशम अर्थात बाद हो जाता है, उस बाधाधिष्ठान शिव कैसे हैं? शांतम शिवम अद्वैतम, ऐसे हैं वो। लेकिन ऐसे होने पर भी उस आनंद का अनुभूति तो हे देवी हे जगदम्बा आपके बिना कोई नहीं कर सकता है। ले भगवान शिव आनंद रूप हैं, लेकिन उनके जो स्वरूप का जो आनंद स्वरूपता है वह आनंद तो तभी छलकता है जब आपका सान्निध्य होता है। समुद्र शांत होता है, लेकिन समुद्र में तरंग तो तब आता है जब उसमें वायु का झोंका पड़ता है। थोड़ा सा वायु का आघात पड़े तो वो शांत पानी में तरंग निकलने लग जाते हैं। अब थाली में पानी भर के रखो, उसको छो नहीं, पानी स्थिर रहेगा। लेकिन जरा सा फूंक मारो है, जरा सा स्पर्श कर दो, फूंक मारते ही स्पर्श करते ही उस पानी में तरंग निकलते हैं। इसी तरह उस शिव के जो परम आनंद रूपता है वो आनंद रूप तब तरंगायित तो होता है जब शक्ति से युक्त होता है। इसी प्रकार से वो उसका जो ज्ञान स्वरूप है, उनके उस ज्ञान स्वरूप में तरंग तब आएगा जब आपका सान्निध्य प्राप्त होगा। किसके? देवी के। इसलिए शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, प्रभवितुम शक्त, किस काम को करने में समर्थ होगा वह शिव? कब? बोले जब शक्ति से युक्त होगा, जब आपसे युक्त होंगे तभी वो कुछ करने में समर्थ होगा, अन्यथा वो अस्तित्व रहेगा कर नहीं पाएगा। विद्युत तरंग का अस्तित्व है, विद्युत तरंग का अस्तित्व तो है, लेकिन वह विद्युत तरंग किसी भी तार में केबल में प्रवाहित हुए बिना वह पावर वह विद्युत कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वह तार भी केवल एक ही तार में प्रवाहित होकर कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए साइंस वैज्ञानिकों ने दो तार का प्रयोग किया, उन्होंने देखा दो तार का प्रयोग किया, एक ठंडा तार है और गर्म तार। गर्म तार में बिजली की उपस्थिति होने पर भी एक तार में उपस्थित हुआ वो बिजली कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी के साथ एक ठंडा तार का कनेक्शन जोड़ देते हैं तो बिजली सब काम करती है। गर्म करना हो तो गर्म, ठंडा करना हो तो ठंडा, प्रकाश करना हो तो प्रकाश, जो काम का वो सब कर देगा। इसीलिए गर्म तार स्थानीय भगवान शिव, ठंडा तार स्थानीय भगवती जगत जननी जगदम्बा, दोनों का पैरेलल पर जब गमन होता है और कहीं जाकर दोनों का कनेक्शन होता है, संयोग होता है, तब वह क्रिएटिव होता है, तब वह काम करने में समर्थ होता है। कौन? पावर। इसी तरह शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम् न चेदेवो देवं कुशलं स्पन्दितुमपि। यदि शिव भी माने सत्ता भी, सत्ता और शक्ति ये दो अलग अलग चीज है, वो अस्तित्व में सत्ता अलग अस्तित्व है, शक्ति का अलग अस्तित्व है, लेकिन सत्ता और शक्ति का जो समन्वय है वही कार्य करने में सक्षमता को पैदा करता है। नचे देवम देवो कुशल स्पंदितुमपि। यदि शक्ति से युक्त नहीं हुए शिव तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, होंगे ऐसा नहीं कि उनको नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कहा। शक्ति से युक्त न हो तो शिव नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि सत्ता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। होना अलग चीज है, करना अलग चीज है, व्यक्ति होना अलग चीज है। घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो घर में है तो सही, लेकिन क्या घर में रसोई बना पाएगा वो बूढ़ा व्यक्ति? उसका अस्तित्व तो घर में विद्यमान है, लेकिन उससे कहो कि रसोई बनाओ तो वो तो निष्क्रिय है। होना अलग चीज है, करना अलग चीज है। वो कहेगा मैं हूं तो सही, लेकिन मेरे में करने की क्षमता नहीं है, कहेगा कि नहीं बूढ़ा व्यक्ति करने की क्षमता नहीं है तो तुम मर गया? बोले मरा तो नहीं हो, जिंदा हो, जिंदा है तो क्यों नहीं करता? बोले अब करने की क्षमता नहीं है। ये देख लो, यही तो शिव शक्ति है। शिव अस्तित्व में तो रहेंगे, लेकिन वो अस्तित्व क्रियाशील तब होगा जब शक्ति से युक्त होगा। यही कारण है कि सृष्टि के आरंभ से ही अतस्त्वाम आराध्य हरि हर विरिंच्यादि वीरपि। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसीलिए शिव भी आपकी आराधना करते हैं, विष्णु भी आपकी ही आराधना करते हैं, ब्रह्मा भी अपने की ही आराधना करते हैं, इंद्र भी आपकी आराधना करते हैं, सभी ने आपकी आराधना की है, तो फिर हम भी आपकी आराधना किए बिना कैसे रह पाएंगे? ये देखो, शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी इस तरह आरंभ किया 100 श्लोकों का। इसी तरह शिव की उपासना, शक्ति से युक्त शिव का स्वरूप कैसा है देख लो, शक्ति से युक्त शिव का स्वरूप कैसा है। शुद्ध शिव का स्वरूप तो पूरे वेदांत दर्शन में प्रतिपाद्य है, ध्यान देना आप लोग, शुद्ध शिव का स्वरूप तो सारे वेदांत दर्शन में प्रतिपादित है। उपनिषद ने वर्णन किया है, ब्रह्मसूत्र ने वर्णन किया है, गीता ने वर्णन किया है, दर्शन शास्त्र ने उस शुद्ध शिव के स्वरूप का वर्णन किया है। लेकिन शक्ति से युक्त हुए हुए शिव का स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए शिव भक्ति से वो तब प्रोत। शंकराचार्य जी ने 100 श्लोकों का शिवानंद लहरी की रचना की, शिवानंद लहरी। अब यही कारण है कि देखो हमारे भारत भूमि में अनेक आचार्य हुए हैं, बहुत से आचार्य एक देव उपासनावाद से ग्रसित हैं, एक देव उपासना बहुतों की मान्यता है, वैष्णव खाली विष्णु को ही देवता मानेंगे और कहेंगे कि नहीं विष्णु की ही उपासना करो, कोई कृष्ण को देवता परमात्मा मानेंगे और कहेंगे कि केवल परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा को छोड़कर और कृष्ण को छोड़कर और किसी का आश्रय में मत जाओ, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने, यहां तक कह दिया है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ऐसे समन्वयात्मक आचार्य हुए उपासना क्षेत्र में, उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए भी पूरा का पूरा भाव विभोर होकर अपने सारे हृदय को खोल दिया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ऐसे स्तोत्रों की रचना की है, अद्भुत है। विष्णु की उपासना के लिए, विष्णु भक्ति के लिए भी ऐसी ऐसी रचना है। कहां अद्वैत वेदांत के परम आचार्य भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, अविनय विपनय अपनय विष्णु हो, हे विष्णु आप महान हैं, मैं क्षुद्र हूं, क्षुद्र होने के कारण ही हो सकता है कि मुझमें बहुत गलती हो, अविनय मेरे जीवन की जो उद्दंडता है, अविनयता है, मेरे मन के चलते ये समस्या आई है, अविनय अपनय मेरे जीवन की जो अविनयता है, ये दुर्गुण है और इसी अविनयता यही दुर्गुण के चलते मेरे आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, इसलिए सबसे पहले महाराज मेरी इस अविनयता को आप हटा दो। दमय समय मन, मेरी मन को आप कंट्रोल कर दो, रोक दो, मेरा मन बड़ा चंचल है और बहुत उच्छृंखल है। दमय मन समय विषय मृग तृष्णा, मैं बार बार समझा रहा हूं कि यह विषय केवल मृग तृष्णा है, लेकिन मेरा कहा माने तब ना, कौन आप भी समझाते हो अपने बच्चे को कि बेटा ये गलत काम है, आपका समझाना माने तब ना, मानता नहीं है। मृग को हजार समझाओ कि अरे हिरण हे मृग मरुभूमि में पानी तीन काल में नहीं हो सकता है, लेकिन आपका कहा वो माने तब ना, वो प्यास से छटपटा रहा है और दौड़ रहा है मरुभूमि की तरह। मृग कहता है कि तुम्हारे कहना मैं कैसे मानूं कि वहां पानी नहीं है, दिख रहा है मुझे इतना बड़ा सरोवर, देख लो तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां, महात्मा हजार कहें कि आनंद भीत अंदर है, महात्मा हजार बार कहें, हजारों महात्मा आकर कहें आनंद अंदर है, समझाएं तब भी तुम्हारे मन और इंद्रियां मानती है, है? मानती है। सुबह हुआ कि आमरस के कटोरी के तरफ मन दौड़ता है, आमरस नहीं बना है लेव जी, विषय मृग तृष्णा। वेदांतियों ने बार बार विषयों को तो केवल मृग तृष्णा कहा है, मृग की तृष्णा यानी मरुजल, ये विषय मृग तृष्णा, ये मरुजल, न कभी इन मरुजल के पानी से किसी का प्यास मिटा है ना किसी मरुजल के देखने वाले दिखाई पड़ने वाले मरुजल से किसी का कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ है, केवल मृग तृष्णा है। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन आपका न इंद्रिय मानता है न मन मानता है। आज एक सज्जन आकर कहने लगे हमसे, महाराज खूब बारिश हुई है, आज तो पकौड़ा खाने का दिन है। बोलो पकौड़ा भी किसका पता है? उन्होंने तो बोल दिया हमारे से, कांदे के पकौड़े, प्याज के पकौड़े। वाह क्या कहना, देखो आज तो पकौड़े खाने का दिन है, प्याज के पकौड़े खाने का दिन है, देखो क्या बारिश हुई है। ले जी विषय मृग तृष्णा, मान रहा है तुम्हारी इंद्रियां मान रही हैं, मान रहा है तुम्हारा मन। शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरी इंद्रियां और मेरा मन भी नहीं मानता, कह तो मैं रहा हूं, समझा तो मैं रहा हूं, लेकिन नहीं मानता। और हमने कई बार सुना है महापुरुषों से और शास्त्र में कई बार पढ़ा है, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, इसलिए शायद आप चाहो तो वह दमय है, समय मन दमय विषय मृग तृष्णा और भूत दयाम विस्तार है। हे भगवान, संसार के सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव विस्तार हो, सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, मैत्री का भाव, मुदिता का भाव विस्तार हो। तारय संसार सागरत, जब तक जिए तब तक हृदय का भाव ऐसा हो कि सारे प्राणियों के प्रति दया का भाव हो, और जब प्रारब्ध समाप्त हो जावे तो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएं, और इन इंद्रिय और अंतकरण के बस में होने की जो पराधीनता है इन पराधीनताओं से हम मुक्त हो जाएं। तारय संसार सागरतः, आपकी कृपा हुए बिना हम संसार सागर से नहीं तर पाएंगे। क्या विष्णु भक्ति का भाव, छह श्लोक। आज वैष्णव लोग भी घर घर में, कट्टर वैष्णव भी शंकराचार्य जी की इस रचना का नित्य पाठ करते हैं। क्या समन्वय है। शंकराचार्य जी ने यह नहीं कहा कि हम अद्वैत वेदांती हैं तो क्या सगुण ब्रह्म की, सगुण परमात्मा की उपासना करें, हमको क्या जरूरत है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में हमारी स्थिति है, हम सगुण साकार में क्यों जाएं? नहीं। इसी तरह शक्ति उपासना, विष्णु गण कृष्ण शिव, देख लो क्या समन्वय कर दिया है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासना में ऐसा समन्वय कर गए, ऐसा समन्वयात्मक आचार्य दूसरा नहीं हुआ है। दूसरा नहीं हुआ है। विष्णु को भी भगवान ही माना है शंकराचार्य ने, शिव को भी भगवान ही माना है, कृष्ण को भी भगवान ही माना है, देवी को भी भगवती ही माना है। वैष्णव लोग व्याख्या करते हो, कोई हो तो नाराज नहीं हो जाना। भगवान शिव को भगवान नहीं मानते। हाँ, भगवान शिव को क्या मानते हैं पता है? भगवान विष्णु के परम भक्त है। देख लो, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त है शिव। लेकिन शंकराचार्य जी के सिद्धांत में ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान शिव के अनंत अनन्य भक्त हैं, ऐसा नहीं कहा। साक्षात परमात्मा है बस। देखो क्या उदारता है उनके चिंतन में, उनके विचारों में कहीं संकीर्णता नहीं दिखता है, दुराग्रता नहीं दिखती है, पूर्वाग्रता नहीं दिखती है। क्या समन्वय है। तो ऐसे जो आचार्य है उनकी ये रचना शिवानंद लहरी, इस पर विचार कर रहे हैं। तो हम जब काठमांडू नेपाल से आए तो हमारे चिमन भाई प्रेमपुरी आश्रम के कार्यकर्ता सक्रिय, उन्होंने फोन किया कि महाराज आप एक महीना के लिए हर साल आते हो, तो इस साल जो है शाम के विशेष कार्यक्रम हम रखना चाहते हैं, विशेष प्रवचन आपका हम रखना चाहते हैं। हमने कहा रख लो भाई, तो किस विषय पर आप बोलेंगे? तो हम तो निर्विषय पर बोलने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विषय है, कोई विषय है क्या? तो फिर भी कुछ न कुछ तो एक आधार तो रखना ही पड़ता है। तो हमने कहा तुम जो कहोगे वो हम उस पर बोलेंगे। तो हमारे शिष्य मोहनीश ने कई टॉपिक्स सुझाया था, उसमें शंकराचार्य जी के अनेक स्तोत्रों का लिस्ट उनको दिया होगा। ये चीज है, इन पर यहां खास विचार नहीं हुआ है प्रेमपुरी आश्रम में। तो इनमें से आप जिस स्तोत्र को या जिसको आधार चाहें उस पर विचार करें। तो हमने कहा शिव भक्ति से भरा हुआ एक ग्रंथ है आदि गुरु शंकराचार्य जी का, उस लिस्ट में शिवानंद लहरी ये नाम भी आया हुआ था। हमने कहा इसी पर प्रवचन करेंगे, चलो। तो वही यहां लिख दिया हमारे चिमन भाई ने, और उस पर आज हम विचार करने के लिए बैठे हैं। शिवानंद लहरी नाम भी बड़ा आनंद है। तीन चीज इस वाक्य में है, एक है शिव, दूसरा है आनंद, और तीसरा है लहर, लहरी। आनंद जब शिव से छलकने लगता है तो लहर हो जाती है। जो आनंद शिव में सीमित रहता है वह जीव का अनुभव गम्य नहीं होता। जीव का हम बात ये कह रहे हैं, हम लोग भ्रांति ना हो आप लोगों को, वैष्णवों के सामने एक बड़ी भारी समस्या है। शिव में आनंद है लेकिन जीव अलग ही रहेगा तभी शिव के आनंद का अनुभव कर पाएगा। शिव जीव की एकता हुई तो शिव के आनंद का जीव कैसे अनुभव, जीव ही नहीं रहा। ये बड़ी भारी समस्या है वैष्णवों को, इसलिए उनको द्वैतवाद कहते हैं। समझे कि नहीं? यदि आप लोग वैष्णव हो तो भी सिद्धांत तो अपना सिद्धांत तो आप लोग समझते ही होंगे। वैष्णवों को द्वैतवाद कहा जाता है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। यदि शिव और जीव की एकता मान लो, दोनों जीव शिव ही हो गया, तो फिर शिव में रहने वाला जो आनंद है वो आनंद का अनुभव कौन करेगा? अनुभव करने वाला जीव तो खत्म हो गया, तब तो शिवानंद का अनुभव गम्य नहीं रहेगा। शिव में रहा जो आनंद, इसलिए जीव शिव से भिन्न ही रहना चाहिए ताकि बड़ा आनंद का अनुभव करे। तो हम इसका उत्तर दिया करते हैं, परमात्मा में जो आनंद है उस आनंद का अनुभव करने के लिए जीव को परमात्मा से भिन्न ही रहना पड़ेगा। तुम जो कह रहे हो इसका मतलब परमात्मा में जो आनंद है वो अपने में होने वाला आनंद परमात्मा को मालूम ही नहीं है, यही ना? परमात्मा आनंद स्वरूप है ये तो तुम कह रहे हो, मान रहे हो, और उस आनंद का अनुभव करने के लिए जीव को अलग रहना पड़ेगा तुम कह रहे हो, इसका मतलब परमात्मा को अपने में जो आनंद है उसका अनुभव नहीं है, उसके अनुभव करने के लिए उसको जीव बनना पड़ेगा। तो क्या ऐसा संभव है क्या? परमात्मा अपने में जो आनंद है उसका अनुभव करने के लिए वह जीव बने तब जाकर अपने में विद्यमान आनंद का तो अनुभव कर पाएगा, लेकिन जब तक जीव नहीं बनेगा अपने में रहने वाले आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा, ऐसा माना जाए क्या? है? परमात्मा जीव क्यों बना बोलो? परमात्मा जीव क्यों बना? वैष्णवों के हिसाब से द्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार तो ये परिभाषा करनी पड़ेगी कि अपने में विद्यमान जो आनंद है उस आनंद का उपभोग अनुभव करने के लिए वह जीव बना, ये कहना पड़ेगा। और हम ये कह रहे हैं, हम माने अद्वैत वेदांत ये कहता है, जीव शिव की एकता क्यों चाहते हो तुम? तो हमारा कहना यह है कि जीव जब तक शिव रूप नहीं होगा, शिव में विद्यमान आनंद का अनुभव नहीं करेगा। अब वो लोग कहते हैं अनुभव करने के लिए अलग होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो अलग नहीं होगा उसको अनुभव नहीं होगा अपने के आनंद का। इसका मतलब भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को या भगवान शिव को अपने भी जो आनंद है उसका उनको अनुभव नहीं है, क्या ये माना जाए? हाँ, अद्वैत में और ज्यादा आनंद का अनुभव होता है, जाने दो, इस पर हमारा दुराग्रह नहीं है। लेकिन वैष्णवों की परिभाषा के अनुसार शंकराचार्य जी यहां कह रहे हैं, जब शिव में जो आनंद है, परमात्मा में जो आनंद है, यहां शिव शब्द का अर्थ तो परमात्मा ही ले लेना बाबा, परमात्मा में जो आनंद है उस आनंद को जब शक्ति से संपर्क होगा, शक्ति से युक्त होगा वो शिव, आप वेदांत की भाषा में कहो ब्रह्म में जो आनंद है वह जब माया से युक्त होकर माया में प्रतिबिंबित होगा तब वह सर्व अनुभव गम्य होगा, वह हृदय अनुभव गम्य होगा। हाँ, वो हृदय गम्य होगा, अन्यथा हृदय का बाध करना पड़ेगा तब जाकर। अब हृदय का जब बाध करके जो आनंद की अनुभूति होगी वो स्वरूप का आनंदों का अनुभव होगा, हृदय से आनंद का अनुभव जो होगा वह लहर होंगे, तरंग होंगे, तो वो तरंग ही है वो आनंद का छलक जा रहा, आनंद छलक रहा है, तो उसको, उस भाव को व्यक्त करने वाला ये स्तोत्र ग्रंथ आदि गुरु शंकराचार्य जी का शिवानंद लहरी। शिवानंद लहरी के पहले के कुछ श्लोकों को शंकराचार्य जी ने शिखरणी छंद में रचना की है। अब आप लोगों को छंद कितना बोध है, शिखरणी छंद, महिमनी स्तोत्र तो आप गाते हो ना, वो शिखरणी छंद में, दुर्गा क्षमापन स्तोत्र आप लोग गाते हो कि नहीं, न मंत्रो नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, शिखरणी छंद में, महिमना पारंते परम विदुषो यद्यस दृशी, शिखरणी छंद। इसी तरह पहले के कुछ श्लोके हैं शिवानंद लहरी के, शंकराचार्य जी ने शिखरणी छंद में गाया है, लिखा है, 100 श्लोक हैं शिवानंद लहरी में। हमारे वैदिक सनातन धर्म का यह नियम रहा है कि परमात्मा भी आनंद रूप है, मंगल रूप है, और आदि गुरु शंकराचार्य खुद शिवजी के अवतार होने के कारण वो भी मंगल रूप है, न शिव में अमंगल का स्पर्श हो सकता है, न शंकराचार्य जी में अमंगल का स्पर्श हो सकता है, और शिव की जो भक्ति है, स्तोत्र की रचना है, वो खुद ही मंगलमय है, अमंगल की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। फिर भी शंकराचार्य जी ने पहला श्लोक मंगलात्मक, पहले श्लोक से मंगलाचरण की है। हमारे वैदिक परंपरा में यह रहा है कि हम कुछ भी करें मंगलाचरण करके करें, मंगलादीनी मंगल मध्यानी मंगलांतानी, कम से कम 3 बार मंगलाचरण करो, पहले मंगल करके कार्य आरंभ करो, फिर बीच में विश्रांति के समय में कार्य विश्रांति में मंगलाचरण करो, और कार्य के पूर्णता समाप्ति में भी मंगलाचरण करो, क्योंकि श्रेयांसी बहु विघ्नानी, श्रेय मार्ग में बहुत विघ्न आएंगे, वो सारे विघ्न ना आवे इसके लिए मंगलाचरण करो। मंगलाचरण करने का 2 प्रयोजन है, एक तो विघ्नों को रोकना, विघ्नों के प्रवेश से रोकना, दूसरा प्रयोजन है कि मंगलाचरण करके कार्य आरंभ करोगे तो कार्य सफलता में कार्यकर्ता को अहंकार नहीं होगा, क्या समझे? 2 प्रयोजन से मंगलाचरण करना है। मंगल परमात्मा है, उनका स्मरण करते हुए कार्य आरंभ करना ही मंगलाचरण है। और मंगलाचरण का यह है कि हे भगवान, मैं जो काम पूरा करने, जो काम आरंभ करने जा रहा हूं, मैं अल्पज्ञानी अल्पशक्तिमान होने के कारण ये पूरा होवे चाहे ना होवे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने के कारण ये आरंभ किया हुआ कर्म आपके कृपा से तो निर्विघ्न पूर्ण हो सकते हैं, यदि आपकी कृपा न हो तो मुझे भरोसा नहीं कि ये निर्विघ्न पूरा हो। एक तो विघ्न बहुत हैं, दूसरा मैं अल्पशक्ति वाला हूं, अल्पज्ञ हूं,